آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
پیش ہے آج کے مکھیہ سماچار وشالی جین کے ساتھ۔ نیو ساؤتھ ویلز کے سکولوں میں لگے گا کل سے کرپان رکھنے پر بین۔ بھارت میں دوسرے آسٹریلیائی ویکتی کی کورونا سے ہوئی مرتیو۔ اور باسکٹ بال میں پہلی مہیلا ایبوریجنل ریفری این بی ایل میں کریں گی اپنا ڈیبیو۔ اور اب خبریں وستار سے۔ سڈنی کے ویوسائی گووند کانت بھارت میں کورونا کا شکار ہونے والے دوسرے آسٹریلیائی ویکتی بن گئے ہیں۔ ترینا سولر کمپنی نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ کمپنی کے کنٹری مینیجر نے رویوار 16 مئی کو دلی کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی۔ 47 ورشیہ شری کانت پاریوارک کارنوں سے بھارت گئے تھے۔ شری گووند کانت سے پہلے مئی کے مہینے کی شروعات میں ایک انیہ آسٹریلیائی پرماننٹ ریزیڈنٹ بھارت میں کورونا سے سنکرمت ہونے کے کارن نہیں رہے تھے۔ نیو ساؤتھ ویلز میں کل یعنی 19 مئی سے سارجنک اسکولوں میں کسی بھی طرح کے چاقو لے جانے پر پرتبند لگا دیا جائے گا۔ راجیہ سرکار اس اپواد نیم کو ہٹانے کا فیصلہ کر رہی ہے جو سکھ سمودائے کے بچوں کو دھارمک آدھار پر کرپان اسکول لے جانے کا ادھیکار دیتا ہے۔ یہ بین نیو ساؤتھ ویلز کے سارجنک اسکولوں کے سبھی چھاتروں، کرمچاریوں اور آگنتکوں پر لگایا جائے گا۔ شکشا منتری سارا مشیل نے 2 ہفتے پہلے سڈنی کے گلینوڈ ہائی اسکول میں ہوئی چاقو مارنے کی واردات کے جواب میں اس بین کی گھوشنا کی ہے۔
This isn't in line with community expectations. So we will be working to make that legislative change. But in the interim, I've also asked the department to send advice out to our schools today, updating our policy to say that knives for religious purposes will be banned in government schools.
سکھ سمودائے نے اپنے بچوں کے کرپان اسکول لے جانے کے ادھیکار کا بچاؤ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ بین انہیں اپنے دھرم کو نبھانے میں بادھا بنتا ہے۔ ڈسیبلٹی کیئر اکوموڈیشن نواسیوں میں ٹیکہ کرن کا اب تک کا در 4% ہی رہا ہے۔ یہ تب ہے جب اس کھیتر کو 3 مہینے پہلے شروع ہونے والے ٹیکہ کرن ابھیان کے پہلے چرن 1A میں رکھا گیا تھا۔ فیڈرل کرشی منتری ڈیوڈ لٹل پراؤڈ نے ڈسیبلٹی کیئر میں ٹیکہ کرن کی اس چوک کا بچاؤ کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ ڈسیبلٹی کیئر میں رہنے والوں میں 1000 سے بھی کم نواسیوں کو اب تک ٹیکہ مل پایا ہے۔ پردھان منتری اسکاٹ موریسن نے مانا کہ ڈسیبلٹی کیئر میں ٹیکہ کرن کی گتی تیز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ ایجڈ کیئر اور ڈسیبلٹی کیئر میں ایجڈ کیئر کو پراتھمکتا دی گئی تھی۔
The aged care population, we're over 85% now, and so that has been the population which was most at risk. We saw that, you know, when the contact tracing failed in Victoria, and we saw the second wave just wreak havoc in that state, and we saw the hundreds of lives lost there in Victoria, and they were the most elderly and the most vulnerable, and that's why we've made aged care such a high priority.
وپکشی نیتا اینتھنی البنیزی کا کہنا ہے کہ یہ راشٹریہ شرم کی بات ہے کہ سرکار 2 سب سے اہم کھیتروں میں لاپرواہی برت رہی ہے۔
The government needs to get vaccination and quarantine right. Aged care residents and people with disabilities were people who were supposed to both be in the front of the queue. They were in the first stage. We were told that 4 million Australians would be vaccinated by the end of March. This government's been complacent. The government had 2 jobs this year, to get the vaccination rollout right and to fix quarantine. And they've been complacent in both areas.
व्यवसायी समूह और चिकित्सा अधिकारी सरकार से इल्तिजा कर रहे हैं कि वे बॉर्डर खोलने का एक पुख्ता प्लान तैयार करें, पर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ये कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ध्यान हटाकर घरेलू बॉर्डरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिनके लिए फेडरल सरकार जिम्मेदार नहीं है। श्री मॉरिसन का कहना है कि बॉर्डर का खुलना देश के टीकाकरण दर पर निर्भर करता है और यह है कि जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है उन्हें देश में बिना रोक टोक के यात्रा करने की छूट होनी चाहिए, चाहे कहीं स्थानीय कोरोना फैलाव हो या लॉकडाउन ही क्यों न लगा हो। एएनजी और रॉय मॉर्गन के एक शोध में पाया गया है कि पिछले हफ्ते पेश हुए बजट के बाद बाजार में कॉन्फिडेंस 5.4% के मामूली दर से बढ़ा है। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि इस बजट का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी घटाना है। उन्होंने यह भी कहा, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि गृहस्थियों में खर्चे करने का आत्मविश्वास बढ़े।
So the Prime Minister and I and the Finance Minister and the government more broadly made a decision that this budget had to lock in those gains. And that's what we've done. And taking this historic opportunity we have to drive unemployment even lower from 5.6 down to 5.1 where we were at the start of the pandemic last February and then even below 5%.
लेबर के कोष प्रवक्ता जिम चामस का कहना है कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत और समावेशी बनाने से चूक गई है। सही। और अब खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, माफ कीजिएगा, और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा पट्टी में चल रहे टकराव में 38,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए हैं। बताते चलें, वहां 3 और विस्फोट किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेश के प्रवक्ता स्टीफेन डुजारिक ने कहा है कि 2,500 लोग बेघर हो गए हैं। गाजा स्थित पत्रकार फदी हुसम ने उनमें से एक है जिनकी रिहायशी इमारत सीरिया की हवाई गोलाबारी में ध्वस्त हो गई थी। उन्होंने SBS अरबिक 24 को बताया कि उन्होंने गोलाबारी के दौरान कुछ बेहद भयावह लम्हों का सामना किया।
Horrific moments and no one understands what was going on. Children crying and women crying. And when the bombing stopped, there was a state of confusion among the people in the house as we were about 40 people in the building. Some suggested to go out and others urged to stay for safety.
उधर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बनाया है कि वे इजरायल और फिलिस्तीन के मध्य चल रहे संघर्ष पर विराम लगाएं, पर एक उच्च सीरियाई अधिकारी ने ऐसा ना होने की आशंका जताई है। जहां इजरायल अपनी हवाई कार्यवाही नहीं रोक रहा, वहीं फिलिस्तीनी रॉकेट भी इजरायली शहरों में घात कर रहे हैं। एक हफ्ते से चल रहे इस टकराव में फिलिस्तीन में कुल 212 लोग, जिनमें 61 बच्चे और 36 औरतें शामिल हैं, ने अपनी जान गंवाई है, और वहीं इजराइल के 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। और अब खबरें भारत से। गुजरात में 2 दशक में सबसे भयंकर तूफान चक्रवात ताकते ने सोमवार रात को दस्तक दी। दक्षिण पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान ताकते कहर बनकर टूट रहा है। इस दौरान इलाके में 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे गुजरात में लैंडफॉल हुआ और बिजली की आपूर्ति चरमरा गई। कई पेड़ उखड़ गए और कई घरों को भीषण नुकसान भी पहुंचा। मौसम विभाग ने अपने एक ट्वीट में अब कहा है कि चक्रवात अब कमजोर हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर कम होता नहीं दिख रहा है। मंगलवार को पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 4,329 लोगों की जान कोविड-19 की वजह से चली गई है। वहीं इस दौरान 2,63,533 कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 2,52,28,996 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 4,22,436 लोग ठीक भी हुए हैं। देश का पॉजिटिविटी रेट घटकर 14.09% हो गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के कम्युनिटी सेंटरों को कोविड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। ये सेंटर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं। शहर में अस्पताल व्यवस्था पर दबाव बढ़ने के कारण कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने वाले 3 सेंटर कोविड वार्ड में तब्दील किए जा रहे हैं। वहां काम करने वाले अजहर अहमद राठेर का कहना है कि
तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया कि इसमें कोविड में उन्होंने तब्दील किया है, जिस तरह यहाँ पे अब पैरामेडिकल स्टाफ आएंगे, डॉक्टर साहिबान आएंगे, जो यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे हैं, ताकि इन पेशेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले।
और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.07 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया की पहली एबोरिजिनल महिला बास्केटबॉल रेफरी जैकी डोबर एनबीएल के इंडिजिनस राउंड में डेब्यू करेंगी। इंडिजिनस राउंड फर्स्ट नेशंस कल्चर और बास्केटबॉल को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सम्मान देने के लिए बनाया गया है और ये नेशनल रिकॉन्सिलिएशन वीक में ही पड़ता है। सुश्री डोबर को ये मौका महिला एनबीएल में रेफरी के तौर पर काम करने के बाद मिला है। और अंत में एक नज़र कल यानी बुधवार के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में सुबह की ओस के बाद दिन भर तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 14 डिग्री जबकि न्यूनतम -3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल धूप ही धूप है। यहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में कल बारिश की आशंका जताई जा रही है। यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल आंशिक तौर पर बादल घिरे रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान बताया जा रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।